पृष्ठ संख्या 7, संगीत शिक्षा की समस्याएं। मध्य युग में संगीत शिक्षा प्राप्त करना अत्यंत कठिन था। घरानेदार कलाकारों को अपने घराने की विद्या पर बेहद गर्व था। वे अपने घराने के अतिरिक्त दूसरे घराने की विद्या सीखना तो क्या सुनना भी नहीं चाहते थे। किसी को संगीत सीखना हो तो वर्षों उस्ताद के घर रहकर उनकी सेवा करनी पड़ती थी। गुरु के घर का सभी छोटा मोटा काम तक करना पड़ता था, तब जाकर कुछ ज्ञान उसे नसीब हो जाए तो उसका अहोभाग्य समझा जाता था। पृष्ठ संख्या 8, जगत विख्यात पंडित रविशंकर और उस्ताद अली अकबर खां के गुरु उस्ताद अलाउद्दीन खां के जीवन चरित्र में संगीत सीखने के लिए उनके द्वारा उठाए कष्टों की करुण गाथा का जो वृतांत मिलता है उसे पढ़कर किसी भी सहृदय की आंखें गीली हो जाती थी हैं। ऐसे तो सैकड़ों उदाहरण संगीत जगत में विद्यमान हैं। भातखंडे संगीत शास्त्र के चौथे भाग के प्राकथन में श्री प्रभुलाल गर्ग काका हाथरसी लिखते हैं, भातखंडे के जीवन काल तक संगीत संजीवनी बूटी के भांति था, अर्थात उसे प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी वर्ग को द्रव्य के साथ जीवन का मूल्य भी चुकाना पड़ता था और तब कहीं वह एक साधारण गायक कहलाने योग्य बनता था। असाधारण इसलिए नहीं बनाया जाता था कि घरानेदार बरखुद्दारों के पिछड़ने का भय बना रहता। अतः कला अपनों के लिए थी, परायों के लिए नहीं। इसके पीछे संकुचित मनोवृत्ति के साथ दूसरा प्रमुख कारण यह था कि अधिकांश गुरु अनपढ़ थे तथा अपने शिष्यों को मौखिक शिक्षा देते थे। एक अन्य कारण यह भी था कि वे जब तक अपने शिष्य की योग्यता से संतुष्ट नहीं होते थे विद्या नहीं देते थे, अतः वे अपने शिष्यों की कठोर परीक्षा लिया करते थे। घरानों के गुण एवं दोष। श्री भगवत शरण शर्मा लिखते हैं कि अशिक्षित कलाकारों की संकीर्ण मनोवृत्ति के फलस्वरूप संगीत के क्षेत्र में घरानों की नींव पड़ गई, जिसकी परिपाटी ने संगीत के विकास को अवरुद्ध कर दिया और उसके सार्वभौम व सनातन सिद्धांतों को गहरी क्षति पहुंची। यहाँ पर केवल कलाकारों को दोष देना ही उचित नहीं लगता, उनकी सामाजिक परिस्थिति, रहन सहन एवं शिक्षण पर भी ध्यान देना आवश्यक हो जाता है। युग के प्रभाव से कलाकार अछूता नहीं रहता। अशिक्षण एवं संकुचित मनोवृत्ति के कारण उनकी वृत्ति भले ही कुंठित रही हो, किंतु हमें यह सत्य स्वीकारना ही पड़ेगा कि ये अनपढ़ अशिक्षित कलाकार ऐसी कुशाग्र बुद्धि, अप्रतिम कौशल एवं तीव्र स्मरण शक्ति से उत्पन्न होते थे जो गुण आधुनिक शिक्षा प्रणाली से तैयार हुए विद्यार्थियों में कदाचित ही देखने को मिलते हैं। उन कलाकारों के पास विद्या का जो भंडार था, बंदिशों की जो विपुलता थी, दीर्घ साधना का जो तेज था, कला के प्रति समर्पण की जो भावना थी तथा अपने घराने के प्रति जो गर्व था, सचमुच अप्रतिम है। डॉक्टर नार मारुलकर लिखते हैं, त्यांच्या एकंदर परिस्थिति चा बारकाई ने विचार केला तर असे तिसून पेते की त्यामनी मोठ्या काष्ठाने महत्वाकांक्षे ने व ईर्षेने ही विद्या मिलविनी, ती वाढविली तिंचे संगोपन जीवा भावने केले आड़ी हे महत्वचे लोण त्यानी आपल्या आजत्यच्या पीढ़ी पर्यंत अगदीम व्यवस्थेने आसून पोहोन चाबिले हा त्यान चा महान संस्कृति ठेवा त्यानी। पृष्ठ संख्या 9। ही साधना तरी कीती विविध स्वरूपाजी। राज दरबार में संगीतकारों का संरक्षण तथा घरानों का विकास। कुछ घराने दार कलाकारों की को छोटी मोटी रियासतों के राजा महाराजा उमराव नवाब ठाकुरों ने अपने अपने शौक और शक्ति के अनुसार दरबारी कलाकार के रूप में आश्रय दिया। इन राजे रजवाड़ों के कारण हमारी संगीत कला कुछ सम्मानित रूप से सुरक्षित रह सकी है। घरानों के संरक्षण और विकास के पीछे उन राजा नवाबों का योगदान अमूल्य है। इस आश्रय के कारण जीवन निर्वाह की छोटी मोटी चिंताओं से मुक्त होकर कलाकार पूर्ण निश्चिंतता से कला साधना में निमग्न रहता था। श्री वामन राव देशपांडे लिखते हैं, इन कलाकारों ने अपने जीवन निर्वाह के लिए राजाश्रय तो अवश्य प्राप्त किया, किंतु यह भी सत्य है कि इन्होंने अपना स्वाभिमान खोकर अपनी कला का अपमान कभी नहीं होने दिया। कला की मस्ती उनके तन पर सदैव छाई रहती थी। धन की प्राप्ति के लिए उन्होंने राजाश्रय ग्रहण किया, किंतु धन या कीर्ति के लोभ में संगीत को सस्ता नहीं होने दिया। ऐसे स्वाभिमानी कलाकारों के हजारों उदाहरण संगीत के इतिहास में सहजता से उपलब्ध हैं। राजदरबारों में आश्रित कलाविदों के पास रहकर आज के कई सुप्रसिद्ध कलाकारों ने शिक्षा ग्रहण की है, जैसे मैहर स्टेट के दरबारी कलाकार रहकर उस्ताद अलाउद्दीन खान ने सर्वश्री अली अकबर खां, रविशंकर, निखिल बनर्जी, पन्नालाल घोष जैसे समर्थ कलाकारों को दिया, जिनके फलस्वरूप आज विश्व भर में भारतीय संगीत की लोकप्रियता फैल गई है। पृष्ठ संख्या 10। तथा सितार और सरोद जैसे भारतीय वाद्यों की सुरीली गूंज विश्व में प्रवाहित हो गई है। घरानों के उदय से संगीत छोटे छोटे दायरों में सीमित अवश्य हुआ है, किंतु साथ साथ घरानों ने कला के रक्षक का उत्तरदायित्व तो भी निभाया है। सस्ते मनोरंजन के अंधकार भरे उस युग में इन्हीं घरानेदार संगीतज्ञों ने अपनी कठोर साधना, दीर्घ तपश्चर्या और असीम गुरु भक्ति तथा सही तालीम से संगीत को जीवित रखा। यदि घराने का उद्भव न हुआ होता तो हमारी यह संस्कृति परंपरागत विद्या की पवित्र गंगा सस्ते मनोरंजन के गर्त में डूबकर नष्ट हो गई होती। अतः मेरा तो यही अनुमान है कि घरानों के संगीत को हानि से अधिक लाभ ही हुआ है। यद्यपि युग परिवर्तन के साथ आज घराने के शुद्धता और कट्टरता शिथिल होती जा रही है, तथापि यह हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि इन घरानेदार कलाकारों ने ही हमारी सांगीतिक संस्कृति की रक्षा की है। उन्होंने हमारी संगीत कला को संभाला और समृद्ध किया, और आज उन्हीं की देन है कि संगीत की महानतम निधि हमें प्राप्त हुई है। घरानों का तात्विक स्वरूप। सामाजिक दृष्टि से घराने के ऐतिहासिक विकास क्रम पर दृष्टिपात कर लेने से के पश्चात अब हम घराने की परिभाषा और उसके उद्भव का तात्पर्य देखेंगे। संस्कृत में एक वाक्य प्रसिद्ध है, वंशो द्विविधा जन्मना विद्यया च, अर्थात वंश या कुल दो प्रकार से चलते हैं, एक जन्म से और दूसरा विद्या से। जैसे एक वंश में जन्म लेने वाले सभी व्यक्तियों का एक परिवार या घराना होता है, उसी प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही एक विशिष्ट गुरु शिष्य परंपरा से विद्या पाने वाले सभी शिष्यों का एक परिवार या घराना होता है। डॉक्टर नारा मारुलकर घराने की परिभाषा देते हुए कहते हैं, ये खाद्या युग पुरुषाच्या असामान्य कर्तव्यगारी ने शुरू झालेली थोर आचार विचार परंपरा मणजे घराणे। प्रोफेसर बी आर आठवाले जी अपने लेख संगीतांतिल घराणी में लिखते हैं, प्रत्येक कला क्षेत्रांत कला निर्मिति बाबत एक विशिष्ट असा सौंदर्याचा दृष्टिकोण असतो, त्या सौंदर्याचा कल्पनेनुसार कला निर्मिती करणारे कलावंत आणि त्याचे चाहते यांचा एक वेगळा गुट निर्माण होतो, त्यांनाचे साहित्य चित्रकला शिल्प या कला क्षेत्रे तांत्रांत परंपरा अथवा स्कूल मणतांत व संगीत मध्ये त्यांना घराणी मणतांत। मला वाटते की संगीत क्षेत्रांतील विशिष्ट सौंदर्य कल्पना नाम चे संप्रदाय या दृष्टी ने घराणांकडे पाहिले। मणजे या प्रश्नाचा बराच सा उलगडा होईल। श्री वामन राव देशपांडे घराने के विषय में लिखते हैं, डॉक्टर अशोक रानाडे घराने का अर्थ बताते हुए लिखते हैं, घराने मणजे शिष्ट। इन सब विद्वानों के विचार पर दृष्टिपात कर लेने के पश्चात तथा कुछ गुणीजनों से की गई चर्चाओं व विचारों के आधार पर घराने के विषय में यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कोई एक असाधारण प्रतिभाशाली, प्रबल, महत्वाकांक्षी और कुछ विशेष कर दिखाने की क्षमता पात्र व्यक्ति जब अपनी परंपरागत विद्या में एक अभिनव सौंदर्य कल्पना का निर्माण करता है, तब उसकी कला निर्मित में एक पृथक दृष्टिकोण पूर्ण वैशिष्ट्य का उद्भव होता है। वह उसकी अपनी एक निराली शैली बनती है, जो बाद में कुछ विशेष नियमों और सिद्धांतों से अनुबंधित हो जाती है। स्नेह स्नेह दूसरे लोगों की शैली से उन बंदिशों में इतना अधिक अंतर सुस्पष्ट हो जाता है कि जिसकी पृथकता तुरंत पहचानी जा सकती है, तब वह शैली घराना बन जाती है, जो परंपरागत तथा शिष्य परंपरागत सामी स्वाभिमान और कट्टरता पूर्वक निभाई जाती है। घराने के आद्य कर्ता के प्रति श्रद्धा, प्रेम और शिष्ट की भावना, उसके नियमों को अक्षरशः पालन करने की क्षमता तथा उसके प्रति गौरव और अभिमान की वृत्ति घराने की परंपरागत विकास का मूल स्रोत माना जा सकता है। पृष्ठ संख्या 11, घरानों के नियम। घर शब्द का अर्थ है आवास, वंश अथवा परिवार और घराना शब्द का अर्थ वंश वैशिष्ट निकाला जाए तो अयोग्य नहीं होगा। घराना अर्थात रीति पद्धति, स्टाइल, स्कूल अथवा एक निश्चित परंपरा। घराना कलाकारों का एक ऐसा परिवार है जिसकी प्रत्येक इकाई में उसके नियमों तथा उसके आद्यकर्ता की छाप लगी रहती है। घराने के मुख्य नियम, ध्येय, आचरण और रीति रिवाज उसके समय की राजकीय एवं सामाजिक परिस्थिति तथा उसके मूल प्रवर्तक की अपनी वृत्ति, संस्कार और संस्कृति पर आधारित होते हैं। पृष्ठ संख्या 12, यही कारण है कि घराने के मूल प्रवर्तक की छाप उसके सभी पीढ़ी दर पीढ़ी कलाकारों की कला में स्पष्ट दिखाई देती है। संगीत कला अनुकरणशील विद्या है। घराने के मूल में गुरु शिष्य परंपरा का महत्वपूर्ण स्थान है। गुरु की सारी विशेषताएं शिष्य गले से, हाथ से या पैरों से निकले या निकले, यह घरानेदार परंपरागत प्रथा का मुख्य आधार है। वर्षों की तालीम से ही यह संभव हो सकता है। यही कारण है कि तबला या पखावज पर हाथ रखते ही या थाप लगाते ही मालूम हो जाता है कि कलाकार अमुक घराने से संबंधित है। घराने का मूल प्रवर्तक अपने वंश तथा शिष्यों को अपनी सारी विशेषताएं बताकर तैयार करता है। आगे वह शिष्य अपनी योग्यता और प्रतिभानुसार गुरु की विद्या को अधिक समृद्ध करता है और उसे अपने शिष्यों को सिखाता है। इस तरह घराने की परंपरा फलती फूलती है। अतः एक ही घराने में कलाकारों की परंपरागत शैली चलते रहने पर भी प्रत्येक व्यक्ति विशेष का उसमें योग रहता है, जो उसकी नियमबद्ध परंपरा को संभाले हुए पीढ़ी दर पीढ़ी उसे सजीव एवं समृद्ध बनाता जाता है। नवीन घरानों का निर्माण। वैसे भारतीय संगीत में हजारों प्रतिभा संपन्न तथा उत्कृष्ट कलाकार पैदा हुए हैं, किंतु वे सब अपने अलग घराने निर्माण करने में सफल नहीं हो सके। ऐसे समर्थ कलाकारों की नामावली काफ़ी लंबी है, किंतु संगीत के घराने तो उंगली पर ही गिने जा सकते हैं। इसका यही कारण है कि कलाकार प्रतिभा संपन्न भले ही हों, किंतु घराना निर्माण कर सकें ऐसी सर्जन प्रतिभा और अभिनव सौंदर्य कल्पना की निर्माण क्षमता तो बहुत कम में ही पाई जाती है। उदाहरणार्थ तबला वादक के क्षेत्र में उस्ताद अहमद जान थिरकवा या उस्ताद अमीर हुसैन खां महान कलाकार थे। पंडित किशन महाराज या उस्ताद करामतुल्ला खां की वादन क्षमता पर पूरे देश को गर्व है, या उस्ताद अल्लाह रखा सारे विश्व में प्रसिद्ध हैं, किंतु उनमें से कोई भी अपना नवीन घराना निर्मित नहीं कर सका। वे अपनी परंपरा को ही अनुसरण करते रहे। उनके बाद वादन में उनकी निजी प्रतिभा तथा रंगीन कल्पना सृष्टि अवश्य हुई है, जो उनकी अपनी शैली कहलाती है, किंतु शैली घराना नहीं होती, शैली व्यक्तिगत होती है। जबकि घराने के निर्माण के लिए पृथक सौंदर्य कल्पना का होना आवश्यक होता है। सुप्रसिद्ध मृदंग केसरी नाना पान से बाबू जोध सिंह जी के शिष्य थे। बाबू जोध सिंह नाना पानसे से कहीं अधिक गुणी तथा उच्च कोटि के कलाकार थे, परंतु जहां घराने की बात आती है वहां बाबू जोध सिंह का घराना नहीं कहा जाता, जबकि नाना पानसे का घराना भारत भर में मान्यता प्राप्त है। इसका अर्थ यह हुआ कि बाबू जोध सिंह जी चाहे कितने ही गुणी क्यों न रहे हों और नाना पानसे जी के गुरु ही क्यों न रहे हों, किंतु जो कुछ वे बजाते थे वह गुरु परंपरा से चली आ रही विद्या थी, जबकि नाना पानसे ने अपने गुरु से प्राप्त उस विद्या के किसी सौंदर्यपूर्ण भाग को उठाकर अपनी निजी कल्पना दृष्टि के अनुसार उसके कला निर्माण में परिवर्तन किया। कला प्रस्तुतिकरण का यह अभिनव प्रकार उनकी अपनी एक नवीन शैली बन गई। पृष्ठ संख्या 13, जो गुरु से प्राप्त और गुरु से संबंधित होते हुए भी गुरु के बाज से पृथक हुई, अतः उनके बाज को उनका नाम दिया गया, जो नाना पानसे बाज से प्रसिद्ध हुआ। कालक्रम से यह बाज जब उनके वंशज तथा शिष्य परिवार में फैला तो नाना पानसे घराना बन गया। प्रोफेसर बी आर आठवले जी का एक वाक्यांश यहाँ बहुत सुसंगत लगता है। प्रतिभा संपन्न कलावान ताच्य सौंदर्य कल्पना अभिनव आणी वैशिष्ट्यपूर्ण आसल्या तरीही तो आपल्या सौंदर्य कल्पना नाम सर्वांगीण व्यवस्थित रूप। योग्य आकार व निबद्ध मांडली जो पर्यंत देत नाही तो पर्यंत त्याम घराणे पद्यांचा प्रतिष्ठेला पोच डार नाहीत।